जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले।
ओम शांति। इतनी बड़ी पांडवों की सेना देखकर अंदर से कितनी खुशी होती होगी। बाबा की राइट हैंड भुजाएं, जिन्होंने अपना सर्वस्व बाबा के लिए न्योछावर किया है, तन मन धन समय श्वास संकल्प संपत्ति सब किसकी है? बाबा की। तो ऐसे बाबा के कार्य में लगे हुए, बाबा के प्रति समर्पित बाबा के बच्चे, जिन्होंने बाबा को पहचाना और नई दुनिया बनाने के कार्य में अपने आप को अर्पित कर दिया, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, उनका ये संगठन। जब हम अपनी महानताओं को देखते हैं तो लगता है ये व्यर्थ क्या है, छोटी छोटी बातें जो हमारी विशेष समय और संकल्प की शक्ति को व्यर्थ करती हैं। बाबा तो हम सबको बार बार इस सीजन के अंदर कितनी बार कहा होगा कि बच्चे व्यर्थ संकल्पों की गिफ्ट बाबा को दे दो, अक के फूल हैं ये, इन बाबा के ऊपर अर्पित कर दो। और हम सबके दिल की यही चाहना हमेशा रहती है कि इस ब्राह्मण जीवन में, महान जीवन में व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। क्यों मैं व्यर्थ संकल्प चलाऊं? मुझे तो शुरू से लेकर के यज्ञ में सेवाएं ऐसी मिली हैं जिनमें व्यर्थ को आने की गुंजाइश नहीं रहती है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कुछ संकल्प चलते हैं अधिक, लेकिन बाबा के रत्नों से, ज्ञान रत्नों से खेलने का सुबह से शाम तक, चाहे मुरली है, चाहे दादियों की क्लासेज हैं, चाहे पत्र पुष्प के माध्यम से बहुत सारी बातें जो हम ब्राह्मणों की उन्नति के लिए हैं, वो तैयार करना, पढ़ना, अध्ययन करना, उस पर बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा ने एक बार मुझे एक वरदान रूप में कहा था कि तुम्हारी बुद्धि को वरदान मिल गया है, क्योंकि तुमने अपने स्वउन्नति के साधनों को अपनी उन्नति में यूज किया है, अपनी बुद्धि को बिजी रखा है, कहीं पर भी इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है। और उसके बाद कहा कि ये बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि ये वरदान मिला हुआ है। तो आप सभी भी बाबा के वरदानी बच्चे, बाबा से और कोई वरदान भले पीछे मिले, लेकिन बुद्धि हमारी सदा स्वच्छ रहे, दिव्य रहे, ये वरदान तो हर एक को लेना चाहिए। क्योंकि मम्मा की एक बात मैं आपको सुनाऊं, मम्मा की मुरलियां भी अभी मैंने टाइप की हैं, बहुत सी पुरानी मुरलियां 57 की। उसमें मम्मा ने विशेष एक दो बातें अंडरलाइन कराई हैं कि शरीर को कुछ भी हो जाए लेकिन बुद्धि सदा सालिम रहे। हमारी बुद्धि सदा काम करती रहे, अच्छे से अच्छा निर्णय ले, समय पर निर्णय ले, उलझी हुई डिस्टर्ब बुद्धि न हो। मेरा इस बात पर शुरू से ध्यान रहा है। कार्य बढ़ते जा रहे हैं, सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हम सबको दिखाई देते हैं। जब हम कोई भी कार्य की जवाबदारी लेते हैं, जब अपने आप को हम बालक सो मालिक समझते हैं, तो कोई भी अगर नुकसान होता हुआ दिखाई देता है तो संकल्प चल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। क्योंकि बड़े बच्चे, यज्ञ के बच्चे, रक्षक जो हैं, स्वाभाविक है उन्हें कोई न कोई अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर दिखाई देगा तो संकल्प चलेंगे ही। लेकिन मेरा एक ध्यान अपने आप पर जो रहता है वो मैं आपको आगे, आपके आगे शेयर करता हूं कि जिस बात में मेरी जवाबदारी नहीं है, चाहे वो बहनों की पर्सनल लाइफ है, चाहे यज्ञ के अंदर सेवाओं के विस्तार में कंस्ट्रक्शन की डिपार्टमेंट है, भंडारे की डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट है, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स यज्ञ के अंदर हैं। मुझे जिस डिपार्टमेंट के निमित्त बाबा ने बनाया है ध्यान रहता है, इससे मैं कितनी बचत कर सकूं और कितने लोगों को इससे सुख दे सकूं। मेरी डिपार्टमेंट से आकर के कोई आत्मा डिस्टर्ब न हो जाए और मेरे द्वारा कोई यज्ञ का नुकसान न होने पाए। मुझे जिस डिपार्टमेंट में बाबा ने बिठाया है वो फलीभूत हो, दिन दूना रात चौगुना उसकी वृद्धि हो, उसमें कोई भी कमी पेशी ना आने पाए, इस बात का जरूर ध्यान रहता है। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं या फायदा कर रहे हैं, भले मेरी इंटरनल जवाबदारियां बाबा ने कुछ सौंपी हैं, लेकिन मैं किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। और इंटरफेयर न करने के कारण मन की स्थिति बहुत स्वच्छ, साफ, उलझी हुई नहीं रहती है। ऐसे लगता है कि मैं किसी बात में उलझ नहीं रहा हूं, बहुत क्लीन है, माइंड क्लीन है, कॉन्शियस क्लियर है, दिखाई देता है। ये नहीं होना चाहिए। लोग सुना के भी जाते हैं, पत्र भी आ जाते हैं, कोई कोई ऐसे पत्र बिना नाम के लिख देते हैं जो संकल्प चल जाए। लेकिन जब बाबा बैठा है, हम सबको संपूर्ण निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है कि बाबा हमारा यज्ञ का रक्षक है, बाबा खेवनहार है, खिवैया है, और बाबा इसको पाल ले जाने वाला है। सदा ही एक स्मृति रहती है बाबा के, एक दो शब्द मैं सुनाता हूं नशे के। एक बार बाबा मधुबन निवासियों के बीच में आए थे तो बहुत सारी बातें छोटी छोटी सबने बाबा को सुनाना शुरू किया। अब एक बाबा को मेडिटेशन हॉल में सबको निकाल दिया गया, केवल मधुबन के लोग भाई बहने थे, दरवाजे बंद कर दिए और छोटी छोटी यज्ञ की, कारोबार की बातें जो थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होती हैं वो सुनाई गई बाबा को। बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराए, उनकी बाबा की मुस्कुराहट तो आप सब जानते हो, इतना प्यार से मुस्कुराए और बोला कि किसने रोका है सवेरा, सवेरा तो आना ही है, नई दुनिया आनी ही है, कितने भी विघ्न, कितने भी रुकावटें, कितनी भी परीक्षाएं, कितना भी कोई यज्ञ के विरोध में हो, लेकिन बाबा ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे विजय तुम्हारी निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वर्णिम दुनिया तो बननी ही है, वो तो दुनिया को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये बातें आएंगी और समाप्त हो जाएंगी, इनकी परवाह नहीं करना। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों का फर्ज क्या है, हम अपने संकल्पों को, इस खजाने को बचाएं। हम सब जानते हैं खजाना हमारा कैसे नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। हरेक के पास इसका ज्ञान है, विस्तार है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस, बहुत अच्छी आप सबको समझ है इस विषय में। मैं इसलिए उस रूप से नहीं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा का एक एक बच्चा इस समय नॉलेज फुल है, ज्ञान स्वरूप बना हुआ है, सबके पास ज्ञान है कि व्यर्थ क्यों आता है और उसको हम कैसे समाप्त करें, वो भी विधियां सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है, ये अक के फूल हैं, तुम्हें अर्पित कर दो, अर्पित कर देने हैं और अपनी स्थिति को बहुत निश्चिंत, अचल, अडोल, एक रस, हर हाल में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी स्थिति को न बिगाड़ूं, मेरे संकल्पों में ये ना आए क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कब किया, यही प्रश्न है। कोई भी बात को अगर आप विस्तार में ले जाना चाहो तो ये पांचों प्रश्न उठा लो, चाहे वो अच्छी बात हो या खराब बात हो, आप इन प्रश्नों के आधार से उनका उत्तर निकालने लगेंगे तो व्यर्थ की एक लंबी क्यू बन जाएगी, व्यर्थ की एक माला बन जाएगी, ऐसे हुआ, इसने किया, उसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, सब बातें विस्तार से सब सुनाई देती हैं, समझ में आती हैं, तो एक बहुत बड़ी क्यू लग जाती है। और बाबा कहता है ये व्यर्थ संकल्प ऐसे ही हैं, जैसे मकड़ी कोई एक जाला बुनती है अपनी ही लार से और बहुत सुंदर जाला तैयार करके उसके बीच में जब चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते लगाते अगर उसमें फंस गई तो वहीं प्राण उसके निकल जाते हैं, उसका निकलना उससे मुश्किल होता है। लेकिन कोई कोई मकड़ी समझदार है तो उसको जाले को पहले बुन लेती है और फिर अंदर समा लेती है। तो हम सबको बाबा ने बहुत ऊंची समझ दी है, अपने समान नॉलेज फुल बनाया है। बाबा त्रिकालदर्शी स्थिति में अपने बच्चों को देखता है, यज्ञ को भी त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखता है और हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर के निहारता है। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे कभी कभी वर्तमान स्थितियों को, अपने भाई बहनों की, निमित्त आत्माओं की वर्तमान पुरुषार्थी जीवन को देख करके कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, या अपने आगे भी कई माया के ऐसे तूफान हैं, विकल्प हैं, संकल्प हैं, उनके कारण खुद भी दिल शिकस्त हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे ही समय बीत जाएगा, ऐसे ही युद्ध चलती रहेगी, इतना कड़ी परीक्षाएं आएंगी मैंने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण तो बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, सेवा में आ गए और उसके बाद जब कभी छोटी मोटी बातें आपस में संगठन में होती हैं, बहन भाई साथ में रहते हैं, सेवाएं साथ में होती हैं, विस्तार होते हैं, कोई कलंक लगाता है, कोई कुछ बात कहता है, तो आप समझ सकते हो कितनी फास्ट गति के संकल्प चलते होंगे, ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण, द्वेष भावना के कारण, बदला लेने की भावना के कारण, लोग कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचना चाहते हैं और जब पीछे खींचना चाहते हैं तो नेचुरल है कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप, कोई न कोई बातें सुनाएंगे, कहेंगे कि ऐसा किया, ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर मान लो मेरी दादी ने एक बार महिमा कर दी क्लास के बीच में, तो मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं वो सब सबके आगे नोट होने लगती हैं कि दादी तो इसको इतना चढ़ा दिया, इसको इतना आगे बढ़ा दिया, और देखने वाले साथी सहयोगी फिर सोचने लगते हैं कि कहां से इसकी पूछ खींची जाए, कैसे गिराया जाए। और अगर उस समय मेरी स्थिति हलचल में आ गई तो मेरा क्या होगा, मझधार के अंदर नाव हो जाएगी। इसलिए ऐसे समय पर अपने आप को बहुत संभालना है। कुछ भी हो जाए, अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम संकल्पों को बचा सकते हैं, फास्ट गति के संकल्प नहीं आएंगे। एक तो बाबा कहते हैं संग, संग की बहुत संभाल रखना। मैं जब शुरू शुरू में मधुबन में आया था, बड़ी भावना से बहुत श्रद्धा से, मधुबन में तो सब कौन होंगे, फरिश्ते होंगे, देवताएं होंगे, समर्पित बाबा के बच्चे हैं, बाबा तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल तो यही सब भाई बहन हमारे सामने थे। था थोड़ा सा संगठन, लेकिन दीदी ने आते ही कान में फूंक मारी, संग से अपनी संभाल करना। मेरे संकल्प चलने लगे, संग से संभाल करना। यहां भी यही करना है, दुनिया में भी यही करना है, तो अंतर क्या हुआ? फिर बोला किस संग से संभाल करना। अगर तुम्हारे सामने कोई यज्ञ के विषय में, बड़ों के बारे में, मुरली के बारे में, पढ़ाई के बारे में उल्टी बातें करे, नेगेटिव सुनाए कोई भी बात में, तो ऐसे संग से अपने आप को बचाना। वो संग ठीक नहीं है, क्योंकि कई आत्माएं समर्पित हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा भोजन, कपड़े, व्यवस्थाएं सब अच्छी मिल रही हैं, रहने के साधन मिले हुए हैं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, छोड़ो नौकरी, क्या करना है, बाबा के घर में हम तो सरेंडर होकर सेवा करते हैं। न पढ़ाई से प्यार है, न योग से प्यार है, न अपनी उन्नति के प्रति चिंतन है, और ऐसी आत्माओं का अगर हमने संग कर लिया तो कहां ले जाएगा वो। इसलिए दीदी ने हमारा ध्यान पहले आते ही खिंचवाया था कि संग से अपनी संभाल करना। और संग में चार बातें आती हैं, मैं आपको सार में सुनाऊंगा, क्योंकि एक है लौकिक संबंधियों के संग, जो हमारे समर्पित बच्चों को भी कई बार संबंधों के अधिक अट्रैक्शन में रहने के कारण, जो अधिक लेन देन करते हैं, अधिक ध्यान रखते हैं, लौकिक का छोड़ के तो आ गए, मर तो गए, बाबा के बन गए, लेकिन फिर भी रगे नहीं छूटी हैं, बार बार जाऊं, बार बार पूछूं कैसे हो, क्या है, तो क्या होगा, संबंधों का रंग, उनके संग का रंग कहीं ना कहीं लगता है। मैंने शुरू से देखा है बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे जो यज्ञ में थे, लौकिक संबंधियों में, और वो भी विशेष मैंने दो बातें नोट की, जिनकी लौकिक भाभियां थी, उन्होंने ऐसा संग राला, ज्ञान में चली, मधुबन में आई, उनको बहुत प्यार से भाई ने जो यज्ञ में समर्पित उसने सेवा की, संभाला उनको भी, समझा ये ज्ञान में चल गई है, अभी तो बहुत अच्छा सहयोग होगा, कभी घर में जाएंगे तो बना बनाया खाना मिलेगा, साधन मिलेंगे। और फिर ऐसे उन्होंने अपना जाल चलाया, ऐसे चक्कर में लाए, धीरे धीरे प्यार से बातें करते करते, जो आज कई ऐसे समर्पित बच्चे हैं, कई क्या कहूं, तीन चार, जो बहुत अनन्य थे, यज्ञ के अंदर रहते थे, उस संग ने उनको खींच लिया और वो जाके आज गृहस्थी से भी बदतर बन गए। अभी ज्ञान मिल गया, फिर से आ गए, क्योंकि बाबा का ज्ञान जिसने एक बार ले लिया है, जिसने इतनी पवित्र जीवन बना ली है, वो कहीं भी चला जाए वो सुखी नहीं रहेगा, वो उसको यही खींचेगा। तो ज्ञान में फिर से आ गए, लेकिन एक बार तो संग का रंग लगा और माया खींच करके ले गए। इसलिए बाबा कहता है पहले संबंधियों के, लौकिक संबंधियों के संग से अपने आप को बचाना, नहीं तो उनका रंग जरूर लगेगा और कहीं ना कहीं संकल्प प्रभावित होंगे और वो संकल्प खींच करके उधर दुनिया की तरफ ले जाएंगे। और सबसे अच्छा संग भी कहते हैं उसको, दोस्तों का संग, मित्र मंडली, जिनके साथ हम उठते बैठते खाते पीते रहते हैं, वो भी कुछ एक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे मददगार होते हैं। कोई भी मन भारी हुआ, कोई बात हुई, तो उसमें स्नेह सहयोग दे करके, साथ दे करके और उसे उठा लेते हैं, हमारे उमंग उत्साह को बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं हैं, वो संग अच्छा होता है। लेकिन ऐसे भी कई दोस्त होते हैं, अगर कोई एक बात उनके आगे हमने सुनाई अपने दिल की, तो उसमें और हाँ में हाँ मिला करके और नेगेटिव बातें भर करके हमें और दूरी परिवार से, बाबा से, पढ़ाई से, सेवाओं से वो दूर लेके चले जाते हैं। ये संग और खतरनाक हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से वैर। दुश्मनी भी बहुत नुकसान करती है, जरा भी किसी से मन मुटाव हो गया वो बदला लेगा। इसलिए बाबा कहता है, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से वैर। अगर योगी जीवन में, निश्चिंत जीवन में रहना है, तो कभी किसी से वैर भावना नहीं रखना, और किसी को इतना मित्र नहीं बनाऊं जो उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, उसके बिना मैं शहर पर नहीं जा सकता हूं, उसके बिना मैं सेवा नहीं कर सकता हूं। ये दोनों चीजें हमारे संकल्पों को और हमारे व्यवहारिक जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। कईयों की वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है, वाणी के संग का रंग लगता है। ये तीसरी बात सुना रहा हूं कि यदि मैं किसी की वाणी पर प्रभावित हो गया, चाहे बहन की है या भाई की है, बहुत अच्छी है, बहुत स्पष्ट है, बहुत मीठी है, तो वो वाणी का भी रंग लगता है और उस आत्मा की तरफ खिंचाव हो जाता है। वो भी हमारे व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का एक कारण बनता है। और चौथे कर्म ऐसे हैं, कोई के कर्म बड़े अच्छे हैं, वो सुख ही देता है, बहुत भावना वाला है, बहुत अच्छे कर्म है उसके, तो कर्मों के भी प्रभाव में आत्मा आ जाती है। इसे कर्म बड़े अच्छे हैं, बड़ा गुणवान है, बड़ा चरित्रवान है। तो ये सब संग के प्रभाव हैं। और हम सब जानते हैं, जिस प्रकार का अन्न हम खा रहे हैं, भोजन जो हम कर रहे हैं, वो भी मन को बहुत प्रभावित करता है, उसका भी रंग लगता है, उसका भी संग है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, अन्न की परहेज करो, कोई भी चीज किसी की इधर उधर की दी हुई चीज न लो। भले आज एक अलबेलेपन की भाषा हो गई है, सब चलता है, सब चलता है, सब खाते हैं, सब पी लेते हैं बाहर भी, तो हम सब इस बात पर ध्यान दें। कई बार हम भोलेपन में सब खाते हैं तो हम भी खा लें, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर कितना पड़ेगा, हम अपने आप को खुद देखें। इसलिए ये संग का रंग आत्मा पर न लगे, संग की संभाल हो और निरंतर सत्य के संग में आत्मा रहे, तो मैं समझता हूँ सत्संगी जो है वो व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाता है। बाबा की पढ़ाई का संग है और बाबा की याद का संग है। इस संग के सिवाय और दूसरे सब संग से अगर हम जितना बच सकते हैं अपने आप को बचाएं। श्रेष्ठ संग में जितना आत्मा रहती है, उसके संकल्प अपने आप अच्छे अच्छे चलते हैं। मैं हमेशा दो बातों का ध्यान रखता हूं, एक साहित्य और एक संग। साहित्य में भी आज साहित्य, चलो हम बाहर की ऐसी नॉवेल्स, ऐसी पुस्तकें नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन दूरदर्शन आज जो हम सबके पास आ गए हैं, टीवी, वो टीवी के सीरियल देखने की अगर आदत बन गई किसी को, उसके संकल्प कभी भी शांत, जिस प्रकार से बाबा चाहता अच्छे हो जाएं, वो अच्छे संकल्प नहीं चल सकते हैं। इसलिए बहुत परहेज, जब हम सब योगी आत्माएं हैं, राज ऋषि आत्माएं हैं, त्यागी और तपस्वी बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे इंटरेस्ट जो हमारे संकल्पों को प्रभावित करके व्यर्थ की ओर मोड़ते हैं, उनसे परहेज जरूरी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं देखना है मुझे। न्यूज भी आज दिखाते 2 मिनट हैं और उसके बाद जो दिखाते हैं एडवर्टाइज, क्यों हम इतना अपना समय नष्ट करें। जितना हो सके अपने आप को बचाओ। ये संकल्प जो व्यर्थ चलते हैं, उनके कई कारण ऐसे बनते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहता है समर्थ संकल्पों के लिए अपनी नेचर को बहुत इजी बना दो, सरल। जहां सरल नेचर है, मैंने अपने यज्ञ में सबसे सरल नेचर दादी शांतामणि की देखी। देखा है आप सबने? हाथ उठाओ जिसने देखा। सबने देखा है, हा? सबसे सरल नेचर। ऐसी सरल नेचर तो शायद ही किसकी और हो। मुझे जो संपर्क में रहने को मिला, जब भी मैं दादी के पास गया हूं, जाता था, पूछती थी सब कुछ, कैसे चल रहा है, क्या है, कहां क्या है, सब पूछती थी। दुनिया में भी सेंटर्स पर क्या चल रहा है, क्या समाचार है। लेकिन इतना पॉजिटिव और इतनी सरल नेचर थी, जैसे गुलजार दादी की तो बाबा का रथ ही है, लेकिन शांतामणि दादी एकदम शांत, सरल, बिल्कुल सौम्य। कोई भी बात में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे प्रश्न उठे ही नहीं। बहुत निश्चिंत और सरल स्थिति में रही। उसके चेहरे से भी लगता था इसको कोई भी प्रकार के उलझन नहीं है। हम सब भी जितना हो सके अहम का आवरण उतार दें, क्योंकि अहम का जो आवरण है और वो चढ़ जाता है जल्दी, भाइयों को तो जल्दी आ जाता है। थोड़ा भी कुछ हम कर लेते हैं क्योंकि बुद्धि है, पढ़ाई है, डिग्री है, पोस्ट है, सेवाएं हैं, कलाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं हम सबके अंदर, और हम कर लेते हैं। और उसका थोड़ा सा भी करने का, मैं करता हूं, मैंने किया, जहां मैं आ गया वहां अहंकार घुस गया, आवरण चढ़ गया। जो सरलता होनी चाहिए, उस सरलता में एक बहुत बड़ा विघ्न आ जाता है। मेरी बात नहीं मानी जाती, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं अनुभवी हूं, अनुभव का भी एक नशा होता है। मैंने जो कहा वही राइट है, वहां टकराव की स्थिति। इसलिए हम सब बाबा के सेवाधारी बच्चे अपनी दादियों से सीख लें। हमारी दादियों ने निर्माणता के आधार से हम सबके दिल को जीता है। इतने नम्रचित, इतने निर्माणचित, चाहे दादी बड़ी दादी के साथ में रहा बहुत समय तक, चाहे जानकी दादी को हमने अपने प्रैक्टिकल देख रहे हैं अभी, कभी भी अंदर से नहीं आता कि मैं करती हूं या मैंने किया। वर्णन करूं, चिंतन करूं, कुछ नाम हो जाए, कोई भी भूख नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। अगर कोई उनकी प्रशंसा कर भी रहा है, आपने दादी जी को देखा होगा, हम लोग कभी कभी कह देते थे दादी जी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कार्य हुआ, हमेशा कहते थे मुट्ठा तुमको पता नहीं है कौन कराता है, दादी क्या करती है, दादी कुछ नहीं करती, बाबा कराता, पीछे बैठा है वो दिखाई नहीं देता है, गुप्त है वो, सब कुछ कर रहा है, करण करावन हार की लीला चल रही है, ऐसे कहते थे, करण करावन हार की लीला चल रही है, मैंने क्या किया, तूने क्या किया, कुछ नहीं किया, हम तो कठपुतली हैं, जो बाबा करा ले हम क्या करते हैं। इतनी नम्रचित, इतनी निर्माणचित, कभी भी अपने आप को मैं हेड हूं ये नशा नहीं दिखाया। आपको एक बात सुनाता हूं, शुरू शुरू में मैं जब आया हूं अव्यक्त बाबा के सामने बैठ के मैं रात भर लिखता था, और दूसरे दिन, क्योंकि दीदी दादी तो पार्टियों के समय नहीं बैठती थी, रेस्ट में चली जाती थी, बाबा मिलता रहता था पार्टियों से पूरी पूरी रात, शाम को 7 बजे आया, सुबह 7 बजे तक बैठा है, तो पार्टियां बाबा से मिलती थी और मैं लिखता था जितना बाबा बोलता था, क्योंकि उस समय टेप रिकॉर्ड या कोई दूसरे साधन नहीं थे, तो हाथ से लिखता था, पूरी डायरी भर जाती थी, रात भर बैठा रहता था। तो दूसरे दिन बुलाती थी, कहती थी अभी नाइट क्लास में तुम सुनाओ चल करके, और जब मैं नाइट क्लास में सुनाने जाता था तो सबसे पहले स्टूडेंट कौन होते थे पता है? दीदी और दादी आगे आगे बैठे थे, क्योंकि उस समय सोफे तो थे नहीं, जो किनारे बैठे, छोटा हाल था, और उसी छोटे हाल में एक साइड में भाई बैठते थे, एक साइड में बहने, और दीदी सबसे नंबर वन बैठती थी, और मेरे को गद्दी पे बिठा दिया, बोलती सुनाओ अब मेरा क्या हाल होगा। इतनी निर्माणचित कि कोई भी, मैं पोस्ट पर हूं, मैं गद्दी पर हूं, मैं हेड हूं, मैं दादी हूं, मैं दीदी हूं, नहीं नहीं मैं स्टूडेंट हूं, इतनी निर्माणता और इतनी निरहंकारिता इन सब दादियों के अंदर हमने अभी तक देखी कि वो अपने से सबको ऊंचा उठाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खुद छोटा बन करके उनको सिखाया। हम सभी भी कितने भी योग्य हों, कितने भी योगी बन जाएं, कितने भी अच्छे सेवाधारी बन जाएं, लेकिन अहम का आवरण ना आए ये ध्यान रखना। जहां मैं आएगा वहां व्यर्थ की उत्पत्ति होगी, इसलिए बाबा कहता है मैं का त्याग करके बाबा बाबा की ढाल को सामने रखो, व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। जहां मैं आ जाए वहां बाबा, बाबा ने कराया, बाबा कराता मैं क्या करता हूं। कभी भी तू मैं नहीं होगी जिसमें व्यर्थ समय जाए, व्यर्थ संकल्प जाए, व्यर्थ की तकरार हो, तू मैं हो, उन सब से बच जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा भी दिखाया है अहम तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाबा हमेशा कहता है बच्चे अगर ये संकल्प आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो तुम इसके लिए अपनी डेली डायरी बनाओ। कभी भी मन को रेस्ट मत दो, अगर बेस्ट बनना है तो उसको रेस्ट नहीं देना। तन को थकावट होती है, रेस्ट दी जाती है, लेकिन आलस्य के वश होकर के तन को भी रेस्ट नहीं देना। जो अधिक रेस्ट लेते हैं उनके वेस्ट संकल्प चलते हैं, इसलिए जितना हो सके व्यस्त करो, अपने आप को बिजी कर दो। तन और मन जितना सेवा में लग जाए, जितना समय लग जाए, जितना हो सके बिजी करो, अपने आप व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर सेवा में लग गए हैं मन से, मान लो हमारे पास कोई स्थूल सेवाएं नहीं है, या हमारी ड्यूटी जितनी है वो हमने बहुत जल्दी पूरी कर ली, उसके बाद हमारे पास इतना साहित्य है, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान रतन है, मुरलियां हैं, क्लासेज हैं, ज्ञानामृत है और पुस्तकें हैं बहुत सी, अगर समय मिलता है उसकी स्टडी करो, मन को बिजी करो, पढ़ो अच्छा अच्छा साहित्य, मन अच्छे अच्छे विचार करना शुरू कर देगा। अगर इधर उधर की पुस्तकों पढ़ोगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, और अगर बाबा की पुस्तकें इतनी जो हैं हम सबके पास, मुरलियों का स्टडी है, बाबा के रत्नों का कहीं से भी मिलते हैं। हम आज तक दादियों को देखते हैं, दादी जानकी इतनी एज में जितना माल उनके पास होता है, जो पढ़ने के लिए दे जाता है सब पढ़ डालती, कुछ नहीं छोड़ती। पत्र पुष्प जाता है पहले नंबर में वो पढ़ती है, ज्ञानामृत निकलती है पहले नंबर में वो पढ़ती है, इतनी सारी क्लासेज, इतना सब कुछ, चाहे खुद भी कराया हो, कहेगी मुझे पहले पढ़ने के लिए दे दो मैंने पढ़ूं। मुरली तो कितनी बार पढ़ती। तो हम सब अपनी बुद्धि को बिजी रखें, मन को बिजी रखें, इजी हो जाएंगे और व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाएंगे। इसलिए चार बातें बाबा ने अपने मन को बिजी रखने के लिए हम सबको सुनाई हैं। एक तो बाबा कहता है सदा मिलन में व्यस्त रहो, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, जब समय मिलता है बातें करो, अपने भाग्य का चिंतन, ड्रामा की इतनी श्रेष्ठ भावी जो भगवान की नजर मेरे पर पड़ी, उसने मुझे अपना बना लिया और उसने सब कुछ हमें प्राप्त करा दिया। अगर हम अपने भाग्य और भावी पर भी नाच करें तो बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करने में बड़ा आनंद आता है। अगर समय मिले आपको पत्र लिखने की आदत हो, कुछ लिखने की आदत हो, बहुत प्यार से लिखो। आप लिखेंगे तो आपके अंदर से उत्पन्न होगा और अच्छे अच्छे विचार आएंगे और मन इतना गदगद हो जाएगा, खुशी में आनंदित हो जाएगा कि सचमुच भगवान के मिलने के बाद मुझे क्या मिला है, ऐसी श्रेष्ठ जीवन जो मुझे मिली है, इतनी जो प्राप्तियां हुई हैं, सारे कल्प में किसी को भी नहीं हो सकती। सिर्फ अपने आप से बातें करना सीख लो और अकेले में बैठ करके एकांत में रूह रिहान जिसको कहते हैं, रूह अपने आप से बातें करे, अपने बाबा से बातें करे और बहुत प्यार से उसको अपने अक्षरों में अपनी भावनाओं को लिख डाले, बहुत व्यर्थ बातों से बच जाओगे। तो सभी ने बाबा से रूह रिहान करने का, आज तो आपको काम मिला था ना, खुदा दोस्त को पत्र लिखना, लिखा है सभी ने? जिन्होंने नहीं लिखा है वो हाथ उठाओ, जिन्होंने नहीं लिखा है। अच्छा, एक ही है? अच्छा, एक दो हैं। तो सभी बाबा को, खुदा दोस्त को पत्र लिखना। आप जिन्होंने लिखा होगा उनको तो आज अनुभव होगा जो मैं कह रहा हूं, कितना प्यार में एकदम डूब जाती आत्मा। और सर्व संबंधों से अगर लिखना शुरू कर दो तो बस। इसलिए मिलन में जितना समय व्यस्त हो जाएंगे व्यर्थ से बच जाएंगे। और फिर बाबा कहता है वर्णन करो, जो तुम्हें मिला है दूसरों को दो, बांटो। अगर शौक है, कोई भी मिल जाता है, ज्ञान वर्णन के बिना हम रह ही नहीं सकते, अपने भाग्य का वर्णन करने के बिना रह ही नहीं सकते। तो बाबा ने इतना सब हम बच्चों को दिया है, तो जो संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं, हम और क्या बातें उनसे करेंगे, ज्ञान ही देंगे उनको, वर्णन करेंगे उनके आगे, अनुभव सुनाओ। बाबा ने एक बार हम लोगों का, और कोई सेवा आपको न मिले, पहले म्यूजियम वगैरह नहीं थे, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान सुनाने की और सेवा नहीं मिलती है, आप एक दूसरे को अपने अनुभव बांटो, अनुभव सुनाओ कि हमने कैसे योग में अनुभव अच्छे किए, क्या हमने इस जीवन में प्राप्तियां की हैं, अव्यक्त वतन का मुझे क्या अनुभव है, मूल वतन का मुझे क्या अनुभव है। अगर अनुभव एक दूसरे को सुनाने लगो तो एक दूसरे से कितनी अच्छी अच्छी सीखने की प्रेरणाएं मिलेंगी। इसलिए वर्णन जरूरी है, जो हम सब आपस में ज्ञान की लेन देन करें। और तीसरा बाबा कहता, जितना हो सकता है मनन करते करते मग्न स्थिति हो जाए, मग्न। और वो मग्न स्थिति कई विघ्नों को समाप्त कर देती है। तो लगन और मगन, ये दो शब्द आते हैं। जहां लगन है, लगन माना उत्कंठा, बहुत दिल का प्यार, दिल की लगन कहते हैं। लगन लग गई, बाकी क्या चाहिए, किसकी परवाह करनी, कोई भी कितना भी विरोध करे, कितनी बातें आ जाएं, जहां लगन है वहां कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। इसलिए लगन निरंतर बढ़ती जाए, लगन में कभी कमी ना आए, इसका ध्यान रखना। और लगन को बढ़ाना पड़ता है, कोई चीज में अगर रुचि होती है, उत्कंठा होती है, तो कैसे भी किया जाता है, करना ही है। उसके लिए नींद नहीं देखी जाती, उसके लिए आराम नहीं चाहिए, उसके लिए साधन हो या न हो, करना ही है बस। इसलिए लगन, बाबा के प्रति अटूट प्यार, बाबा के कार्य के प्रति अटूट प्यार, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। अब हम सबके अंदर क्या धुन है, चाहे कितनी भी विंग्स हैं, चाहे कितनी भी प्रकार की वैरायटी सेवाएं हैं, लेकिन गोल क्या है, किस तक पहुंचना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए हम कोई भी तेरे मेरे हदों में न जा करके, हम सबके अंदर ये रहे कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना, और कोई चांस नहीं है तो मैं अपनी मनसा वृत्तियों को बहुत शक्तिशाली बना करके, एकाग्र करके, शुभ भावनाओं से संपन्न बना के, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी एक शुभ वृत्ति रख करके मनसा शक्तियों का दान दे, अपने आप हमारी लगन बढ़ जाएगी। क्योंकि जितनी सेवाएं होंगी, जितनी आत्माओं को प्राप्तियां होंगी, उतनी मुझे दुआएं मिल जाएंगी। इसलिए लगन को बढ़ाना है, सदा मग्न स्थिति में रहना है, वर्णन करते रहना और अपने मिलन में मस्त रहना, ये है व्यर्थ से मुक्त होने की विधियां। और ये बहुत अच्छी विधियां बाबा ने हम सबको समय प्रति समय मुरलियों में सुनाई है, एक नहीं है, सैकड़ों युक्तियां हैं। ये करो, ये करो, ये करो, कोई भी विघ्न, कोई भी बात का अगर हमारे अंदर संकल्प उठता है तो बाबा उसको समाधान देता, बच्चे ऐसे करो, इसमें बिजी हो जाओ, ये ठीक हो जाएगा। मन को मारना मत, मन आपकी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मन एक बहुत बड़ी शक्ति है हम सबके पास, इसको तो कहते हैं ये हमारा वाहन है। और इसी वाहन के लिए कहा जाता अंतर मन वाहन, अंतःवाहक। और इस वाहन के द्वारा हमें यात्रा करनी है, कभी सूक्ष्म वतन जाना है, कभी मूल वतन जाना है, कभी वैकुंठ में जाना है, कभी दुनिया की सैर करनी है, किसी को संदेश देना है, किसी को मदद करनी है, ये तो वाहन का काम करता है, इसको मारना थोड़ी, इसको बांधना थोड़ी है। इसको मारना भी नहीं है, इसको बहुत प्यार से इसकी खातरी करके इसको संभालना है और समझाना है। इसलिए बाबा कहता है, वैसे तो इस बार कह दिया मन जीते जगत जीत, लेकिन वास्तव में मन को क्या जीतेंगे, मन को जीतना माना जैसा कहूं वैसा वो करने लगे, लेकिन जीतना माया को है। मन के अंदर जो मायावी संकल्प आ चुके हैं उन मायावी संकल्पों पर विजय प्राप्त करनी है, जीत उन पर प्राप्त करनी है, मन हमारा कहना मानने लगेगा। तो हम सब मन जीत बनने के लिए, मन को अच्छा वाहन बनाने के लिए, मन से यात्रा करने के लिए, मन को बहुत अच्छा संग दें, अच्छा भोजन दें, अच्छी प्रकार की संगत दें, अपने आप देखो आप मन हमारा कंट्रोल में आ जाएगा, कहना मानने लगेगा, और ये बहुत बड़ी एक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। जो संकल्प करो होने लगे, बाबा कहता है आगे चल करके सारी कारोबार बोलने से नहीं संकल्प से चलेगी, वाइब्रेशन से चलेगी। क्या हम अपने संकल्पों पर इतना ध्यान देते हैं कि हमारे संकल्प इतने समर्थ हों, इतने शक्तिशाली हों, वही संकल्प उठे जो होने वाला हो, और कोई संकल्प उठे ही नहीं। और अगर कोई ऐसे संकल्प लेकर के, बहुत से संकल्प लेकर के मेरे सामने आ जाए, तो मेरी ऐसी स्थिति हो, ऐसी एकाग्रचित संकल्प हो जो उसके संकल्पों का उसे समाधान मिल जाए, उसके प्रश्न समाप्त हो जाएं। अभी दादियां ये पुरुषार्थ कर रही हैं कि अगर कोई बहुत सारे प्रश्न लेकर के आता है, जैसे साकार बाबा के समय की बात सुनाते हैं कि बहुत सारे प्रश्न हम लेकर के गए बाबा के सामने, और बाबा ने दृष्टि दी, सब प्रश्न समाप्त हो गए, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो स्थिति तब बनेगी जब हम बहुत काल तक व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, जो मेरे काम की बातें नहीं सोचनी है, न वर्णन करनी है, न सोचनी है, न चिंतन में ला करके उनका विस्तार करना है, फुल स्टॉप। इतनी ब्रेक पावरफुल चाहिए, ब्रेक पावरफुल हो, लेकिन ब्रेक पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी को स्टॉप कर दो। मंजिल पर पहुंचना है तो ब्रेक लगाई जाती है एक्सीडेंट से बचने के लिए, लेकिन फिर मोड़ करके फिर से ब्रेक छोड़ करके अपने घर चलना है। तो हम सभी जहां पर कोई ऐसे एक्सीडेंट होने वाले हैं, जहां पर कोई टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है, स्वभाव संस्कार जहां टकरा रहे हैं, वहां अपने आप को ब्रेक लगा दें, चुप, एक चुप सौ भला, हम शांत हो जाएं, दृष्टि से सेवा करें, बोल से न बोल करके बिल्कुल मन और मुख का मौन लग करके संकल्प को शांत किया, सामने वाला समझ जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर बोल दिया तो तकरार पैदा हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मन हमारे नियंत्रण में आ जाए उसके लिए साधना की जरूरत है, सच्ची तपस्या चाहिए, दिल की तपस्या चाहिए, सध जाएगा ये। अगर साधना सच्ची है तो मन सध जाएगा। सध जाना माना शून्य हो जाना नहीं, लेकिन सध जाना माना जिधर उसको मैं ले जाना चाहूं उधर जाए, जो सोचना चाहूं वही सोचूं, ऐसे नहीं चल रहे हैं। रात बीत गई वो संकल्प चलते रहे, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई बात हो गई, जिसने जरा भी श्रीमत की आज्ञा का उल्लंघन किया, बाबा कहता धर्मराज की सजाएं तो किसने देखी, बाद में मिलेंगी कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल सजा है उसको व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते हैं। श्रीमत की अगर मनसा में, वाचा में, कर्मणा में कहीं भी अवज्ञा हुई, नियम और मर्यादाओं को हमने जरा भी उल्लंघन किया, तो आप अपने व्यर्थ को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ये व्यर्थ संकल्प सजा है, मुझे सजा नहीं खानी है, तो हम अपने आप को श्रीमत की बाउंड्री के अंदर बांध करके रखें। सभी समर्पित भाई बहने, हम अपने से ही सबको कह रहे हैं, इस बात को अंडरलाइन कर लो कि हमारी ये पैर का अंगूठा भी श्रीमत की लकीर का उल्लंघन न करे। और हरेक बाबा के बच्चे को श्रीमत किसे कहा जाता है वो सब कुछ पता है, नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है, श्रीमत क्या है, हर एक जानता है। इसलिए हम सब सुबह से अमृत वेले उठते रात को सोने तक हम सब के लिए जो मर्यादाएं हैं खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की, ड्रेस की, आपस में संबंधों की, व्यवहार की, जितनी मर्यादाएं हैं, जो बाबा के बच्चे इसमें दृढ़ हैं, प्रतिज्ञा किया हुआ है, जिन्होंने व्रत लिया है, वो सहज अपने व्यर्थ को समाप्त कर सकता है। श्रीमत का मुझे उल्लंघन नहीं करना, कुछ भी हो जाए। और श्रीमत माना मुरली, देहधारियों की मत को श्रीमत नहीं कहा जाता, वो राय हो सकती है लेकिन मत नहीं, श्रेष्ठ मत नहीं। इसलिए बाबा की मुरली में हमें श्रीमत मिल रही है और श्रीमत के प्रमाण जो कदम हम उठा रहे हैं, हम सहज रीति से बाबा की, बड़ों की, परिवार की दुआएं ले रहे हैं और उनकी गुप्त दुआएं मुझे व्यर्थ से मुक्त रखें। न उलझन में उलझेंगे, न तूफानों में भटकेंगे, न बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा इतनी बड़ी युद्ध है क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं था ब्राह्मण बनने के बाद कुमार जीवन में इतना विकारों से लड़ना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। लेकिन युद्ध तभी करनी पड़ती है, मेहनत तभी लगती है जब हम कहीं न कहीं अपने आप को लूज छोड़ देते हैं। अपने को टाइट करो, अपने आप को एकदम ऐसा समझो ये मर्यादाएं हमारे श्रृंगार हैं, इस पर मुझे चलना है, इस पर कुछ भी हो जाए इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। अगर हम अंदर से प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि ईश्वरीय नियम और ईश्वरीय मर्यादाएं ये हमें संपूर्ण रीति से पालन करनी है, आप देखेंगे सहज रीति से व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, उठेगा ही नहीं। कहते हैं अर्जुन जब द्रौपदी को वरने के लिए गए तो उनके लिए क्या परीक्षा थी, ऊपर मछली टंगी थी, नीचे तेल की कढ़ाई थी और निशाना बांधना कहाँ था, मछली के आंख में भी जो काला कोला कोया होता उस पर, कि अगर उस पर तुमने तीर मार दिया, ऊपर देखना नहीं, देखना है तेल में, मछली की परछाई देख करके और उसमें जो मछली की आंख है, आंख के ऊपर जो कोया, उस पर तुमको तीर लगाना तो तुमको द्रौपदी मिलेगी। इतनी बड़ी परीक्षा थी। द्रौपदी माना ध्रुवपद, जो हम सबका पद है, जो हमारा निश्चित लक्ष्य है, नर श्री नारायण समान बनना, नारी श्री लक्ष्मी समान बनना, अथवा ये कहें सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जो हम सबका गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना, केवल केवल एक बाबा को देखना, कोई को नहीं देखना। सी फादर फॉलो फादर, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इविल और कुछ नहीं हम ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में चिंतन करना, किसी की देह के बारे में वर्णन करना, ये व्यर्थ है, इविल है। इसलिए बाबा कहता बच्चे इविल से बचो, व्यर्थ से बचो, सोचो भी नहीं, संकल्प भी नहीं करो, और अभी तो साधारण संकल्प भी नहीं, नेचुरल संकल्प जो है उनमें भी अभी समय नहीं गवाओ, जितना हो सके शुद्ध संकल्पों में रमण करो। और शुद्ध संकल्पों की लिमिटेशन है, वो बहुत कम होते हैं। कोई भी जो अच्छी चीज होती है, शक्तिशाली चीज होती है, वो मात्रा में, क्वालिटी में कम होती है, क्वांटिटी नहीं होती उसकी। इसलिए जितने हमारे शुद्ध संकल्प, शेष संकल्प, समर्थ संकल्प हैं, उतने सीमित संकल्प हैं, उतने हमारे कंट्रोल में हैं, और हम जब चाहें इसको, इस संकल्प से सेवा कर सकते हैं, संकल्प से यात्रा कर सकते हैं, संकल्प से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और संकल्प से अपनी कारोबार चला सकते हैं। प्रैक्टिकल करके देखना, थ्योरी नहीं। अगर हमारे संकल्प पर हमारा कंट्रोल आ गया, हमारी सारी कारोबार अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप चलेगी और चलती है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए और इसके लिए साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, कोई बाहरी इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट सब समाप्त हो जाए, केवल वे बाबा मुझे दिखाई देता, लक्ष्य सामने है, बाबा सामने है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का हमारा ध्येय बना हुआ है, तो हम सब बातों से निवृत्त होकर के नथिंग न्यू, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। बाबा हमारा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, उसके बच्चे कल्याणकारी हैं, कोई भी बात मेरा कल्याण नहीं कर सकती, ये निश्चय है, स्थिति निश्चिंत है, संकल्प व्यर्थ जा नहीं सकते। इसलिए अगर संकल्पों पर हमारा सबका कंट्रोल आ जाए, हम सब एक संकल्प में इतने इकट्ठे हुए हैं बैठ जाएं, क्या वायुमंडल बन जाएगा, अपने आप चारों तरफ से शांति की प्रकंपन फैल जाएंगे। तो हम इसकी प्रैक्टिस करके देखें, और जिन में कोई कनेक्शन नहीं है, जिन बातों में कहीं लेना देना हमारा नहीं है, एक शब्द इंग्लिश का बहुत डेंजर है, एक पहले SMS क्वेश्चन भेजा था कि W शब्द सबसे ज्यादा डेंजर है। W शब्द देखते हैं ना, कहाँ कहाँ लगता है, व्हेन व्हाट व्हेयर सब में W लगता है, तो इसलिए कहीं पर भी W शब्द आए तो समझ लो डेंजर आ गया। हम सब इस W शब्द से बच के रहें ना, व्हाट व्हाइन करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। बाबा कहता है जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, संगम युग कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो और निश्चित भावी को जान करके अपने आने वाली दुनिया का आवाहन करो, और उसमें अपने श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र संकल्पों का जितना हो सके उतना योगदान दो, तो बाबा के कार्य को सहज ही अंगुली मिल जाएगी और ये गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा, कलयुग बदल करके सत्य आ जाएगा। ओम शांति।